शांति ओम शांति। बहुत सुंदर अभी हमें भाई सब ने पीछे क्लास कराई और जो बीन स्मृति स्वरूप का अभी नेक्स्ट सेशन है, अदिति बहन हमारे बीच में बैठे हैं और काफी बार आप उन्हें सुन भी चुके हैं, पहले भी काफी टाइम आपने ये सारे सेशंस कराए हैं और अभी बहुत सुंदर टॉपिक लेकर हमारे बीच में अदिति बहन आ रहे हैं, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, है ना। क्योंकि जो अश्रेरी की बात बताई और स्मृति स्वरूप की बात है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो अदिति बहन का मैं परिचय शॉर्ट में देना चाहूंगी। आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, बहुत अच्छे आप लेवल पे सेवाएं देती भी हैं और सबसे बड़ी बात आप परिवार में रहकर बाबा की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। कहते हैं गृहस्थी हैं नहीं कर पाते, लेकिन आप एक एग्जाम्पल बन के सबके लिए सैंपल बन रहे हैं। आप परिवार में हैं, आपके बच्चे भी हैं और आप उनके साथ उनको लेते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आपने बनाया और साथ में आपने लार्जेस्ट मैथ्स लेसन एंड 3 रिकॉर्ड्स इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपने मेमोरी एंड फास्टेस्ट कैलकुलेशन का आपने अवार्ड भी लिया है, बेस्ट मेमोरी ट्रेनर का आपने अवार्ड लिया और बहुत सुंदर दो बुक्स भी लिखी हैं, हाउ टू बिकम अ ह्यूमन कैलकुलेटर। हम हर चीज आजकल किस पे करने लग गए हैं, फोन्स पे व्हाट्सएप पे, है ना। लेकिन हम अपने ही ह्यूमन के अंदर ही इतना अच्छा ब्रेन है, उसको हम कैसे एक्टिव करें, तो ये भी आपने बताया है। और हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग, हम कैसे भी हर चीज को मेमोराइज कर सकते हैं। तो अदिति बहन का बहुत 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 बीइंग स्मृति स्वरूप के इस सेशन में वेलकम है और हम सबकी तरफ से जोरदार ताली के साथ आपका पुनः 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 स्वागत है। बहुत सुंदर तरीके से आप जब ORC भी आते हैं, दिल्ली में भी आते हैं, तो बहुत बड़े ऑडिटोरियम में बहुत सुंदर बच्चों के प्रोग्राम्स करते हैं और मैं आपसे ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बच्चे नाम लेते ही खुद आ जाते हैं और पूरा जितनी देर का सेशन होता है सब बच्चे बैठ के सेशन को अटेंड करते हैं बहुत सारे। और बच्चों को ये चीज बताना और साथ में टीचर्स को टीच करना, तो ये बहुत बड़ी आपकी कला है। ओम शांति।
ओम शांति। सभी एकाग्रचित होके बैठे या कुछ लोग एंटर कर रहे हैं, बुद्धि थोड़ा इधर उधर है, एकाग्र हो जाएं। पर सबकी कंसंट्रेशन पावर चेक करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एक्शन करूंगी। व्हाट इज दिस? वन। दिस इज तो जब मैं वन ये आपको दिखाऊंगी तो आपको एक बार क्लैप करना है, ठीक है? कैसे? और गुड। अब लेकिन मिलके करना, अलग अलग नहीं, ठीक है? एक बार प्रैक्टिस करते हैं। ओके गुड। अभी क्या करना है, जब मैं एक फिंगर दिखाऊंगी तो आपको क्लैप नहीं करना है, आपको फर्स्ट पे तो हाँ क्लैप करना है और सेकेंड पे आपको वेव करना है, ठीक है? और थर्ड पे भी आपको क्लैप करना है। चलिए एक बार फिर से। अच्छा एक बार लास्ट पर। और वंडरफुल। चल तो सभी एकाग्र होकर बैठ गए हैं। पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जैसे अभी दीदी ने कहा कि योगी जीवन में हम बाबा की श्रीमत पर चल, बहुत सी बाबा ने जो हमें स्थिति बताई है, स्मृति स्वरूप बनना है और शरीरी अवस्था को अनुभव करना है, फरिश्ता स्वरूप में टिकना है, तो उसके लिए एकाग्रता की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है ये एकाग्रता? हम सभी जानते भी हैं और आज हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली योगी जीवन में हम इस एकाग्रता की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन है क्या चीज? कॉन्सेंट्रेशन वो क्षमता है किसी की भी, वो पावर है जिससे हम फोकस करते हैं अपने मन को किसी भी एक सब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे या किसी एक विचार पे, और जब हम उसके ऊपर फोकस करते हैं तो बाकी सब अन्य बातों से, विचारों से, फीलिंग से, पदार्थों से, एक्सपीरियंसेस से हम अपने मन और बुद्धि को हटा लेते हैं, सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, बाकी और किसी चीज पे नहीं। इसी पे मुझे याद आता है एक इंसिडेंस एक साइंटिस्ट थे, वो अपनी रिसर्च में लगे हुए थे, तो इतना डीप अपनी रिसर्च में थे कि उन्हें घर परिवार किसी का भी होश नहीं था। रोज उनकी पत्नी की भाई वो रिसर्च कर रहे हैं, कुछ अच्छा अच्छा बना के खिलाती, लेकिन वो कभी कुछ तारीफ ही नहीं करते थे। तो एक दिन पत्नी को गुस्सा आया और उसने कहा कि आज मैं इनके खाने में नमक ही नहीं डालू। तो उसने नमक नहीं डाला, फिर भी उस साइंटिस्ट ने बड़ी खुशी से खाना खाया और अपनी रिसर्च करता रहा। उसे बड़ी हैरानी हुई, उसने कहा करके देखती हूँ कितने दिन तक नहीं पता लगता। करते करते एक महीना हो गया, अब तो पत्नी को भी विश्वास हो गया कि जरूर बड़ी एकाग्रता से कोई बड़ी इम्पोर्टेंट रिसर्च चल रही है, जो एक दिन भी इन्हें पता नहीं लग रहा कि खाने में नमक ही नहीं है। और ऐसा करते करते 3 महीने हो गए। फिर एक दिन अचानक वो साइंटिस्ट बोले कि क्या बात है, आज खाने में नमक ही नहीं है। तो पत्नी ने कहा कि आपकी रिसर्च पूरी हो गई क्या? बोले हाँ, तुम्हें कैसे पता, सुबह ही तो पूरी हुई। तो कहने का भाव ये है कि एकाग्रता ऐसी हो कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसके सिवा मन और बुद्धि को कोई भी चीज आकर्षित ना करे अपनी तरफ, चाहे सिचुएशन अप है डाउन है। जब ऐसी शक्ति होगी तो बाबा उस शक्ति के लिए बाबा कहते हैं कि अंत समय में ये एकाग्रता की शक्ति ही प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगी। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि अंतिम समय में आपकी संकल्प शक्ति ही काम आएगी, और संकल्प शक्ति आपकी जितनी तीव्र होगी, जितनी एकाग्र होगी, बाबा भी जब टचिंग देगा तो जो बच्चे बाबा से उस टाइम एकाग्र बुद्धि से जुड़े हुए होंगे वो बाबा की टचिंग को पहचान पाएंगे। और उस समय और किसी तरह से सेवा नहीं होगी, संकल्पों से ही सेवा होगी, लेकिन जितना हमारी संकल्पों में एकाग्रता की शक्ति होगी। बाबा कहते हैं कि जैसे साइंस की पावर कैसे पता लगती है, जब उसको प्रयोग किया जाता है और उसका फल सबको मिलता है तो कहते हैं हाँ भाई साइंस बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसी साइलेंस की पावर की प्रत्यक्षता जब होगी, उसका जो प्रयोग है वो एकाग्रता की शक्ति से हो। तो एकाग्रता एक शक्ति है, ये हम सब जानते हैं। एनर्जी हम सब में है, थॉट पावर में भी एनर्जी है और चारों तरफ भी एनर्जी है, लेकिन जब वही, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं दुनिया में कि जब सूरज जो वैसे इतना प्लेजेंट लगता है स्पेशली सर्दियों में, लेकिन उसकी रेस को भी जब कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू फोकस, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हम फोकस करते हैं एक पॉइंट पे कुछ समय तक के लिए, तो वो भी उस पेपर को जला देता है। तो कैसे होता है वो, जब फोकस हुआ। ऐसे ही हमारी भी संकल्प शक्ति तो हम हर टाइम चलाते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान भी बाबा हमें संकल्पों का, श्रेष्ठ संकल्पों का संग्रह ही देता है, जिसे मुरली कहते हैं। और योग में भी हम श्रेष्ठ संकल्पों की धारा ही चलाते हैं, लेकिन उसके अंदर जितना हमारा फोकस्ड संकल्प होगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी, उतना ही योग हमारा पावरफुल होगा। जगदीश भाई साहब ने एक किताब में बताया था, लिखा हुआ है उन्होंने कि योग है क्या, श्रेष्ठ संकल्पों की धारा, निरंतर धारा, वो योग है। तो हम देखते हैं ये एकाग्रता की शक्ति जो है वो दो प्रकार से हम यूज करते हैं। एक तो है कर्म में एकाग्रता, जैसे अभी हमने बात करी कि कोई भी काम हम फोकस होके करें। इसी तरह ब्राह्मण जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे सेवा का कार्य करते हैं या मुरली सुनते हैं हम, तो बिल्कुल एकाग्र होकर जब हम उस कार्य को करेंगे तो उसका लाभ हमें 100% मिलेगा। वो एब्जॉर्प्शन जो नॉलेज की होगी वो हमारी बहुत तीव्र होगी। दूसरा है योग में एकाग्रता। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि योग में एकाग्रता का मतलब है निरंतर श्रेष्ठ संकल्पों की धारा। तो धारा जो होती है, जैसे तेल की धारा होती है, तो उसमें एक बूंद तेल की दूसरी बूंद से कनेक्टेड होती है। ऐसे ही जब हम योग लगाते हैं तो हमारे जो श्रेष्ठ संकल्प उसमें हम क्रिएट करते हैं, तो उसमें हमारे संकल्पों की जो धारा है वो कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं योग में बैठी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति की किरणें मुझसे निकल रही हैं, मेरे आसपास सभी के पास शांति की किरणें पहुंच रही हैं, जिनको मैंने कोर्स कराया उनके पास भी शांति की किरणें पहुंच रही हैं, और फिर जैसी बुद्धि में उनका चित्र आता है, पता नहीं कितना समझाते हैं, ढंग से रेगुलर आते ही नहीं है, बाबा पता नहीं ये कब समझेंगे, इतना सहज ज्ञान है फिर भी इनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अब शुरू तो हुए थे हम शांत स्वरूप से प्रसन्न चित्त होकर, और एंड हो जाता है प्रश्न चित्त बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये योग नहीं है। जहाँ पर भी संकल्पों का मिश्रण हो गया, श्रेष्ठ संकल्प पे कोई और संकल्प आ गया, तो योग कट। तो योग है निरंतर धारा, एक श्रेष्ठ संकल्प से दूसरा श्रेष्ठ संकल्प जुड़ा हुआ हो, और इस निरंतर धारा के लिए, ये जब निरंतर धारा होगी तो वो जो कहते हैं ना अगन होगी। कंसंट्रेशन के लिए किसी भी चीज में, अगर हम स्थूल की भी बात करें तो हम देखते हैं क्या चीज इम्पोर्टेंट है। आजकल के बच्चे बड़ा कंसंट्रेट कर पाते हैं जब वो टेलीविजन देखते हैं, वीडियो गेम्स देखते हैं। क्या आधार है कॉन्सेंट्रेशन का बताएंगे आप? रुचि, इंटरेस्ट, राइट। तो हमारा भी योग में पहली बात तो इंटरेस्ट होना चाहिए। वो तो हम सब में है, इस हॉल में जितने भी बैठे हैं, है ना, पूरे देश भर से हम सब भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम सब में वो रुचि है, वो लगन है। बाबा कहते हैं अगर ये लगन बहुत तेज है, दृढ़ इच्छा है कि मुझे करना ही है, जैसा बाबा कहते हैं उस पर चलना ही है, तब हम बाबा की याद में मगन हो पाएंगे, लगन से मगन हो पाएंगे। और जब वो मगन पूरी तरह हम हो जाएंगे, डीप एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाबा के प्यार में, तो वो अगन लगेगी, वो अगन जिसमें वो शक्ति है परिवर्तन करने की। क्योंकि हमारा ध्येय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हमें एक उद्देश्य दिया कि जिससे हमें बाबा से योग लगाकर हमें अपने आसुरी गुणों को, अवगुणों को परिवर्तन किसमें करना है, दैवी गुणों में ना। इसीलिए बाबा जो मुरली के हमें पॉइंट्स देते हैं उसमें भी हमें यही पॉइंट्स उसमें से निकालना है कि किन चीजों की धारणा करने से हम वो दैवी गुण अपने अंदर धारण कर सकते हैं। तो ये कनेक्टेड है, लगन होगी तो मगन हो पाएंगे और मगन होंगे तो वो अगन आएगी। अब ये अगन जो है, मगन कैसे हो और उस अगन को कैसे प्रोड्यूस करें, तो उसके लिए सबसे पहले चेक करते हैं। क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे थे कि बीच बीच में व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, कोई ऐसा जिसकी बिल्कुल निरंतर धारा हो, बिल्कुल भी वेस्ट बीच में आता ही ना हो, है कोई ऐसा यहाँ पर, तो हम ताली बजवा दें उसके लिए। चलिए, तो हम सभी यही सीखने तो आए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर लगन है तो मगन हो पाएंगे, तो उस लगन के लिए देखते हैं, टेस्ट लेकर देखते हैं, ठीक है। आपका हम एक टेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे, आप सभी को पूरी अटेंशन देनी है, क्योंकि योग में अटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रेष्ठ संकल्प तो हम सबके हैं, लेकिन बहुत जल्दी कोई ना कोई बीच में वेस्ट आ जाता है, तो उसके लिए देखते हैं हमारी अटेंशन कितनी स्ट्रांग है। तो अभी यहाँ पर हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और आपको उसके अंदर आप देखेंगे कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ ने व्हाइट पहना हुआ है, कुछ ने ब्लैक पहना हुआ है कपड़े जो पहने हुए हैं, और वो एक बास्केटबॉल से खेल रहे हैं। आपको क्या करना है कि जो व्हाइट प्लेयर्स हैं वो आपस में बास्केटबॉल कितनी बार पास करते हैं वो काउंट करना है, ठीक है। सभी का ध्यान इस वीडियो पे होना चाहिए। चलिए, काउंट हाउ मेनी टाइम्स अ प्लेयर्स वियरिंग व्हाइट पास द बास्केटबॉल। अच्छा, यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि अगर बाई चांस आपकी काउंटिंग आपको लगे हमसे स्किप हो गई है तो भी कोई बात, बीच में स्किप भी हो जाए आप कंटिन्यू रखिएगा, आप पूरी कोशिश करिएगा कि एंड तक आपसे जितना काउंट हो सके आप उतना जरूर काउंट करिएगा, छोड़िएगा नहीं बीच में, ठीक है। हाउ मेनी पासेस डिड यू काउंट, 12, ओके 12, हाउ मेनी ऑफ यू काउंटेड 12, अच्छा 13 कितनों ने काउंट किया, अच्छा 14 कितनों ने काउंट किया, ओके अच्छा 15 भी किसी ने किया, ओके बहुत थोड़े से, अच्छा 16 किसने किया, ओके इससे ज्यादा भी है किसी के, और किसी ने किया कितना, 17 किसने किया, आपने 7, एक ने 17 किया, ओके अच्छा किसी ने 12 से कम किया, अच्छा थोड़े वो भी हैं, ठीक है। अच्छा देखते हैं विच इज द करेक्ट आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज 15 पासेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिड यू सी द गोरिल्ला, गोरिल्ला कोई था ही नहीं, कितनों ने देखा, थोड़े से ने, क्योंकि था ही नहीं कोई, नहीं था ना कोई गोरिल्ला, हाँ बिल्कुल नहीं था। अच्छा कितनों ने नहीं देखा वो भी एक बार हाथ उठाएं, देखिए ऑलमोस्ट एवरीबॉडी नहीं देखा। ऐसा करते हैं, कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर, कुछ कह रहे हैं देखा, बहुत थोड़े से हैं चाहे वो इस हॉल में, लेकिन वो कह रहे हैं तो उनके डाउट को क्लियर कर लेते हैं या नहीं, तो हम ऐसा करते हैं रिवाइंड करते हैं इसको, वापस चलाते हैं इसको। चलिए आप देखते हैं, हाँ इतना बड़ा गोरिल्ला और बीच में एक्शन भी करके गया और वो हमको दिखाई नहीं दिया, तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि दिखाई क्यों नहीं दिया, क्योंकि फोकस हमारा किस पे था, व्हाइट पे था ना। हमने अपने मन बुद्धि को एक काम दिया कि आपको फोकस सिर्फ व्हाइट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, कितने पासेस दे रहे हैं, आपको उस पे फोकस रखना है। तो मैं कहती हूँ सभी के लिए तालियां बजाइए जिनको गोरिल्ला नहीं दिखा, लेकिन ये भी अच्छी बात है, खैर दिखा भी तो अच्छा है कि आप अवेयर भी रहे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर हम व्हाइट पर एकाग्र थे तो हमें ब्लैक गोरिल्ला, जबकि वो साइज में इतना बड़ा था, एक्शन भी करके गया, रुक कर भी गया, तो भी हमें नहीं दिखा, इसका मतलब हम अपने मन बुद्धि को जो मैसेज दें दृढ़ता से कि मुझे ये कार्य इतनी देर करना है, तो कोई बड़ी से बड़ी चाहे समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई और बीच में नेगेटिव संकल्प आ ही नहीं सकता। मानते हैं इस बात को, तो जरूरत है अटेंशन की। जिस तरह से हम यहाँ पर अटेंशन दे रहे थे उस तरह से अगर हम अपने संकल्पों पे भी अटेंशन दें तो कोई और फॉरेन या नेगेटिव संकल्प बीच में नहीं आ सकता। तो जब हम योग में एकाग्रता की बात करते हैं तो उसमें संकल्प श्रेष्ठ संकल्प कौन से हो, सिर्फ आत्मा और परमात्मा से संबंधित जो बाबा ने हमको संकल्प दिए हैं उनसे ही रिलेटेड संकल्पों और कोई संकल्प ना हो, तो उसके लिए समर्थ संकल्पों का खजाना हमें इकट्ठा करना होगा। जिसका स्टॉक ज्यादा होगा वो प्रोबेबिलिटी में मैथ्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि इतनी व्हाइट सॉक्स है इतनी ब्लैक सॉक्स है, अगर मान लीजिए 90 ब्लैक सॉक्स है 10 व्हाइट सॉक्स है तो प्रोबेबिलिटी क्या है ब्लैक सॉक्स लाने की, ना तो 9/10 हो जाता है। तो इसीलिए जिसका स्टॉक ज्यादा जितना होगा तो चांसेस भी उसी संकल्प के आने के होंगे। तो समर्थ संकल्पों के खजाने की जब हम बात करते हैं तो हमारा सोर्स क्या है, मुरली है। तो मुरली की हमें बहुत थोरो स्टडी करनी चाहिए, सिर्फ क्लास में एक बार मुरली नहीं सुनना, उसके बाद भी उसका मनन चिंतन जो बाबा इतना उस पर इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ को भी अगर हम देखें तो बाबा मुरली से, बाबा कहते हैं मुरली से जिसको प्यार उसको बाबा से प्यार, तो अंत समय तक भी बाबा ने मुरली का पाठ बजा के गए। तो मुरली से हमारा प्यार होना चाहिए और उस मुरली से जब हम सुनते हैं मन और बुद्धि को हम ये कार्य देकर बैठे, जब हम मॉर्निंग क्लास में बैठते हैं तो ये काम देकर बैठे, क्योंकि काम देना बहुत जरूरी है नहीं तो मन कहीं और चला जाएगा फिर, तो उसको काम देकर बैठे कि आज के लिए मुझे लक्ष्य निकालना है इसमें से, बाबा ने मेरे लिए कौन सा पॉइंट कहा, जो पॉइंट आपको अच्छा लगे चाहे एक या दो पॉइंट ही हो वो निकालिए अपने लिए, हो सकता है वो धारणा में पॉइंट ना हो, सकता है वो वरदान में ना हो, आपको जो पॉइंट अपने लिए लगता है कि आज मुझे इसका स्वरूप बनना है या आज मुझे इस पे मनन चिंतन करना है, कुछ भी वो अपने लिए पॉइंट आपका अपना हो, और ये मुरली क्लास में बैठने से पहले मन को ऑर्डर देके बैठिए कि आज इसमें से एक पॉइंट निकालना है मुझे, और फिर रात को सोने से पहले चेक करिए आपने होमवर्क किया या नहीं, अपने आप को स्वयं ही होमवर्क दीजिए। तो जब हम काम देंगे अपने आप को तो आप देखेंगे परसेंटेज जो होगी ना वो श्रेष्ठ संकल्पों की बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और उसके लिए एकांतवासी होना बहुत जरूरी है। एकाग्रता की शक्ति के लिए भी आज जैसे सुबह निर्वैर भाई साहब जी भी बता रहे थे कि बाबा का पुरुषार्थ भी क्या रहता था, बाबा के ऊपर जितनी जिम्मेदारियां थी होती उतनी तो शायद हम में से किसी के पास भी नहीं है, फिर भी बाबा कोशिश करके अकेले में एकांत में समय निकालते थे और श्रेष्ठ संकल्पों को क्रिएट करते थे, और इतनी एकाग्रता होती थी बाबा के संकल्पों में कि जो ऑरा क्रिएट होता था, जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती थी, तो कोई पास में भी आता था तो उसे ना केवल वो अनुभूति होती थी वो खुद उस स्वरूप में टिक जाता था। तो एकांत वैसी होना, एक रस स्थिति होना वो बहुत जरूरी है एकाग्रता की शक्ति को हमें जमा करने के लिए। आज भी जैसे बाबा ने मुरली में कहा योग बल से तुम्हें विश्व की राजाई पानी है, तो बल है ये जो हम योग करते हैं वो जमा करना है हमको, उसके अंदर शक्तियों को जमा करना है, और जितना हमारे संकल्पों में पावर तेज होगी, संकल्पों में पावर तेज कैसे होगी उसको भी आप देखें, दो चीजें हैं संकल्पों में, एक तो निश्चय, जितना संकल्प में निश्चय ज्यादा होगा उतना आप देखेंगे कि उस संकल्प दिल से निकले। दूसरा अनुभव, निश्चय ही अनुभव कराता है, हम अगर अनुभवी हैं बाबा के उस ज्ञान रतन के, जैसे बाबा ने कहा अगर मैं तुम्हारा हर पल साथी हूँ, तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, अगर मैं इस पॉइंट की अनुभवी हूँ कि जब जैसे याद करती हूँ बाबा हाजिर हजूर होता है तो वो मेरे दिल से निकलेगी वो बात, वो संकल्प मेरे जो आएगा वो बहुत स्ट्रांग संकल्प होगा। तो एकांतवासी बनकर हम बाबा के साथ उन रिलेशंस को भी महसूस करें, कि बाबा ने योग के लिए हमें लॉ और ऑर्डर दोनों बताए। लॉ क्या बताया बाबा ने, स्वयं को आत्मा समझ, ये लॉ है, बिना आत्मा समझे बाबा से कनेक्शन नहीं हो सकता। स्वयं को आत्मा समझ, परमात्मा को भी यथार्थ रीति जान, बाबा के घर में बाबा को याद करना, और ऑर्डर क्या है, देह और देह के संबंध पदार्थ उन सब को छोड़, उनको भूल, पाप से सहसंबंध निभाना। तो वो जब हम एकांत होंगे बाकी सब संबंधों से दूर होंगे तब हम उस लगन में उस मगन हो सकते हैं। तो अपने लिए अकेले में टाइम निकालना, अकेले रहना, तब हम सबके बीच में रहते हुए भी अंतर्मुखी हो पाएंगे। और फिर निश्चय, जैसे अभी बात करें कि संकल्पों में जो हमारे पावर आती है वो निश्चय से आती है, निश्चय बहुत बड़ी चीज है, और निश्चय जिसको होता है वो किसी अवस्था में, मतलब निश्चय एक रस अवस्था का आधार है। मुझे अपना अनुभव याद आता है, मैं आज से 9-10 साल पहले की बात है, ज्ञान में अभी नई आई थी, कुछ महीने हुए थे मुझे मुरली सुनते हुए, बाबा पे पूरा निश्चय था तो मुझे प्रोफेशन भी मेरा तभी स्टार्ट हुआ था एज अ स्पीकर, और बाबा के ज्ञान में भी मैं नहीं आई थी, तो मुरली मैं रोज सुनती थी। लेकिन एक मौका ऐसा आया, उस दिन मेरा सेशन था और उस समय के हिसाब से मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत VIPs के बीच में मुझे पहली बार ऐसा मौका मिला था जिनके बीच में मुझे बोलना था। और केवल वो एक दो घंटे का सेशन नहीं था, वो सुबह 9 से लेकर शाम के 4 बजे तक का पूरा वर्कशॉप था, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी थी। तो मेरे को अंदर से डर लग रहा था, तो उस दिन सुबह से सारी रात में सोई नहीं, तैयारी करती रही, और सुबह भी जैसे मुरली सुनते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर गई हुई थी तो मेरे युगल भी मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा मुरली सुन लो फिर जाने का टाइम हो जाएगा। तो मेरे मुख से एकदम से ऐसे ही निकल गया, मैंने कहा मुरली तो मैं बाद में भी पढ़ सकती, पहले ये तो पढ़ लूं जो मुझे वर्कशॉप करनी है। तो बोले सारी रात से पढ़ी तो रही हो। मैंने कहा नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है अभी खाली हूं, मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे आप पढ़ना, तो मेरे को मुरली के लिए अभी टाइम नहीं है। तो अच्छा, मेरे युगल अकेले मुरली पढ़ने लगे, तो उन्होंने 2 मिनट बाद मुझसे कहा कि नहीं, सब छोड़ के पहले बैठो सुनो। बाबा ने उसमें इतनी सुंदर बात कही थी, जैसे बाबा खुद उतर के मेरे से बात कर रहा था। उस समय बाबा ने जो शब्द थे, मुझे अभी भी उसका सार याद है। बाबा ने कहा, बच्ची क्या पहली बार कर रही हो, कल्प किया है तुमने, क्या तुम्हें अपने ऊपर निश्चय नहीं है। फिर बाबा ने एग्जांपल दिया मुरली में कि एक अटैची सूटकेस जब हम पैक करते हैं तो बैठ के चारों कोने पैक करते, उस दिन संडे था, व्यक्त मुरली थी बाबा की, तो उसमें बाबा ने कहा कि चारों कोने पैक करते कहीं से भी कुछ निकल नहीं रहा हो और फिर उसको बंद करते हैं, इसी तरह क्या निश्चय के चारों स्तंभ तुम्हारे पक्के हैं। एक स्वयं पे निश्चय, क्या पहली बार कर रही हो। दूसरा बाबा ने कहा, बाप पे निश्चय, सर्वशक्तिवान की संतान हो, उसके बाद अपने ऊपर डाउट कैसे। फिर तीसरा बाबा ने कहा, ड्रामा पे, और चौथा बाबा ने कहा, परिवार, जिनकी आशीष लेकर तुम आई हो। मतलब ये शब्द थे उस मुरली में कि जिनकी आशीष लेकर आई हो, क्या उस परिवार पे विश्वास नहीं है। और ये शब्द सुनने थे बाबा के, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप, कोई संकल्प नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, सारी किताबें बंद। और इतने में बस हमें लेने आई गए थे वर्कशॉप के लिए। मुरली आगे मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन बिल्कुल आधे घंटे का रास्ता था निर्संकल्प। जो इतनी घबराहट हो रही थी, जो इतना मन ऊपर नीचे हो रहा था, क्या होगा, कैसे बोलूंगी, कुछ नहीं। और मुझे ऐसा लगता है जब मैं स्टेज पे चढ़ी, कोई संकल्प लेके नहीं चढ़ी थी कि ओपनिंग कैसे करूंगी, क्या बोलूंगी, लेकिन बाबा ने शायद जितना अच्छा उस दिन बुलवाया, वो शायद मुझे ऐसा लगता है दोबारा से अगर कोई कहे तो उतना अच्छा बोल ही नहीं सकता। तो उस दिन मैंने देखा कि निश्चय, बाबा ने मेरे को उस दिन निश्चय का पाठ पक्का कराया कि कोई भी जो संकल्प हमारे, कोई भी परिस्थिति आती है, ये तो चलिए लौकिक रूप से छोटी सी परिस्थिति थी, लेकिन कई बार बाबा के बनने के बाद बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी आती हैं। कोई बीमारी आ जाती है, कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है, घर में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो मन जो है हमारा एकाग्र नहीं हो पाता, क्योंकि मन और बुद्धि हमारे उसी प्रॉब्लम में, उसी का सोल्यूशन ढूंढने में लगी रहती है। लेकिन उस समय अगर ज्ञान के आधार पे और अनुभव के आधार पे निश्चय है आपको कि ड्रामा कल्याणकारी है, वो कल्याणकारी सर्वशक्तिवान मेरा पिता है, मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता, कितना ही नुकसान हो जाए, कितना ही अपयश हो जाए, अगर मैं श्रीमत पर चल रही हूँ तो मेरा अकल्याण हो नहीं सकता, इसमें भी कल्याण समाया हुआ है। तो निश्चय बुद्धि जब हम होते हैं तो हमारे को संकल्पों में फुल स्टॉप लगाने में बहुत हेल्प मिलती है। यहाँ तक कि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि इस समय अंतिम समय का जो पुरुषार्थ है वो है बिंदु, फुल स्टॉप लगाना। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अगर फुल स्टॉप नहीं लगता है तो उसमें अपना समय वेस्ट नहीं करो बिंदु स्वरूप बनने में। जब कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है और गाड़ी तेज स्पीड पर होती है तो बाबा ने कहा कोशिश करते हैं ब्रेक लग जाए, लेकिन अगर ब्रेक नहीं लगती है तो दिशा चेंज करनी पड़ती है जिससे एक्सीडेंट ना हो। तो यही करना है, अगर बिंदु रूप में नहीं टिक पा रहे हो, फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, दिशा परिवर्तित कर दो। जो संकल्प वेस्ट संकल्प आ रहे हैं, नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं, उसको श्रेष्ठ संकल्प में परिवर्तित कर दो। लेकिन बाबा ने उसमें ये भी बताया कि कमजोर संकल्प को श्रेष्ठ संकल्प में कन्वर्ट करने के लिए एक पावरफुल मशीनरी चाहिए। मशीन होती है ना जो कन्वर्ट करती है एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में, तो यहाँ कौन सी मशीनरी चाहिए, बुद्धि वो मशीनरी है। और बुद्धि बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए, मशीन बहुत पावरफुल होनी चाहिए। और पावर कहाँ से आएगी, जब उस सर्वशक्तिवान सोर्स ऑफ पावर से हम कनेक्टेड होंगे, हमारी बुद्धि कनेक्टेड होगी, तो वहाँ ये निश्चय बुद्धि होना बहुत जरूरी है। बाबा के साथ हम कोई भी प्रॉब्लम हो या ना हो, ये निश्चय हो जो हो रहा है कल्याणकारी ही हो रहा है। तो आप देखेंगे, मेरा तो ये पर्सनल अनुभव है कि कई बार ऐसा लगता है कि इसमें हमारी सक्सेस नहीं है, लेकिन हमारा निश्चय उस फेलियर को भी सक्सेस में कन्वर्ट कर देता है, वो अकल्याणकारी चीज भी हमारे लिए कल्याणकारी साबित हो जाती है। तो निश्चय बुद्धि, हमेशा अपना निश्चय हम चेक करते रहें कि हमारा कोई भी परिस्थिति आ जाए, क्या है हमें बाबा पे निश्चय। दूसरा निश्चय कि बाबा हमें जो बताता है कि तुम ही थे 5000 साल पहले वाले देवी देवता और तुम ही अब वो बन रहे हो। कई बार हमें इस बात पे निश्चय नहीं होता, हमें लगता नहीं हम थोड़ी ऐसे बन पाएंगे। बाबा कहता है हम थोड़ी स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे, नहीं बाबा कहता है, भगवान कहता है तो हम जरूर बनेंगे, है ना। भक्ति मार्ग में ज्योतिषी कह देता था उस पर विश्वास हो जाता था, और ये ज्योतिषों का ज्योतिषी भगवान हमें कह रहा है कि तुम ही बनने वाले हो, तो हम निश्चय तो करें, क्योंकि निश्चय के आधार पर ही हमारा आगे का कर्म भी होगा। निश्चय ही नहीं होगा तो हम ढीले हो जाएंगे पुरुषार्थ में, तो निश्चय तो करें। कह कौन रहा है? भगवान कह रहा है। फिर लक्ष्य मेरा क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य तो है ही, हम सबको बाबा ने एक ही लक्ष्य दिया हुआ है ना, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए भी मेरा रोज का भी कुछ पुरुषार्थ में लक्ष्य होना चाहिए। मुझे याद आता है कि एक बार चक्रधारी दीदी जी ने क्लास में कहा था, ये होमवर्क दिया था कि आज सारा दिन आपके स्मृति में रहना कि हम स्वर्ग के देवी देवता हैं, महाराजा महारानी हैं। तो कैसी हमारा खान पीन है, कैसी हमारी चलन है, कैसी रॉयल्टी है हमारे बोलने में, हमारे स्माइल में, हम कितने शब्दों में एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे हम उठते बैठते हैं। आज सारा दिन इसको प्रैक्टिस करना, बहुत सुंदर अनुभव हुआ उस दिन। ऐसा तो नहीं कहूंगी कि हर पल याद रहा, लेकिन अटेंशन बहुत रखा, सुबह ही मॉर्निंग में ही अपने आप को संकल्प दिया, आज जो भी काम करना है चलते फिरते भी ये देखना है क्या मैं देवी देवताओं की तरह चल रही हूँ, बोल रही हूँ, मुख से कितना धीरे बोल रही हूँ, कितने शब्द निकाल रही हूँ, किचन में काम कर रही हूँ तो कैसे काम कर रही हूँ, वहाँ की रसोई में कैसे काम करेंगे, मतलब हर चीज में ध्यान रखने की कोशिश करी। और मैंने अपने अंदर बहुत रॉयल्टी का अनुभव किया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। वो ऑटोमेटिकली, हमने ब्रह्मा बाबा के बारे में सुनते हैं कि बाबा को जब निश्चय हो गया, बाबा को देखा कि मुझे ही कृष्ण बनना है, मुझे ही नारायण बनना है, तो बाबा उसी स्मृति में सदा रहते थे। उनके जो लक्षण थे वो बिल्कुल जैसे एक छोटा सा कृष्ण हो, यहाँ तक कि वो इतना उसको फील करते थे, महसूस करते थे उस स्वरूप को, कि आने वालों को भी उनके अंदर से कृष्ण के साक्षात्कार होते, तो आने वालों को भी, देखने वालों को भी हमारे अंदर से वो लक्षण दिखाई दे। तो वो लक्ष्य अपने लिए रखे कि आज का मेरा लक्ष्य क्या है। जैसे आज भाई साहब ने सुबह लक्ष्य दिया कि क्रोध मुक्त बनना है, तो क्रोध मुक्त तो बड़ा लक्ष्य हो गया, लेकिन उसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य हम देखें कि आज मुझे क्या करना है जिससे कि मैं क्रोध मुक्त हूँ। तो अपनी चर्निंग हम खुद से करें, बाबा ने इसके लिए क्या महावाक्य दिए हैं, या बाबा ने कैसी चलन बताई है, या मैं अपने लिए कुछ पॉइंट्स निकालूं कि आज मुझे ये प्रैक्टिस करना है। और फिर दृढ़ता भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी हम लक्ष्य रखें पूरी दृढ़ता के साथ रखें। लौकिक में या अलौकिक में हर कार्य में सफलता मिलती है अगर हम दृढ़ता रखते। इसीलिए कहते हैं दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। मुझे याद आता है अपनी एक बहन का अनुभव, हमारे ही सेंटर पे हैं, तो उनके बिजनेस में कुछ लॉस चल रहा था, काफी लॉस चल रहा था। तो वो थी तो वैसे बिल्कुल घर में रहने वाली माता, लेकिन उसने संकल्प किया कि बाबा कहता है कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ और तुम मेरी संतान हो, तो कोई भी समस्या कैसे समस्या रह सकती है। वो इतना कुछ भी नहीं जानती थी अपनी फैक्ट्री के बारे में, फिर भी उसने संकल्प किया कि मैं जाऊंगी, मैं संभालूंगी अपने हस्बैंड के साथ फैक्ट्री, मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है। और उसने जाना शुरू किया, तो जब वहां गई तो पता लगा आसपास इतने गांव हैं और इतनी फैक्ट्रीज हैं और सब लॉस में जा रही हैं। तो उसको अंदर से संकल्प आया, मुझे सिर्फ अपनी फैक्ट्री को ही नहीं निकालना, मुझे बाकी सबको भी करना है। तो मुझे उसका संकल्प सुन के एक बार आया, मैंने कहा ये कैसे करेगी अकेले। तो उसको यही आता था, वो रास्ते में जब जाती थी वो सब गांव वालों को दृष्टि देती थी, क्योंकि गांव में भी सब उसी में वर्कर्स जो थे, फैक्ट्रीज में वर्कर्स थे तो वो रहते थे। तो उसको यही आता था कि बाबा ये सब आपके बच्चे बन जाए, बाबा इन सबको नॉलेज देनी है, इन सबको ज्ञान देना है कि भगवान धरती पर आया हुआ है, इन सबको सिखाना है। अभी एक साल हुआ है उसे जाते हुए, फैक्ट्री में तो जो चेंजेस आ ही रहे हैं उसके साथ साथ कम से कम 20 गांवों में वो क्लास कराती है। आप देखिए घर में रहने वाली माता जो कभी घर में भी नहीं बोलती, वो बिल्कुल किसी के सामने वो इतना जैसे दबके रहती, और अभी वो इतना कर रही है। तो हम जब लक्ष्य रखते हैं उसको दृढ़ता से रखते हैं, रोज बाबा से अमृत वेला शक्ति लेते हैं कि बाबा ये संकल्प मुझे करके दिखाना ही है, करना ही है, तो उससे मेरे योग में भी एकाग्रता आती है, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्लियर है और दृढ़ है, विश्वास है, निश्चय है मुझे कि होना ही होना है, तो हमारे योग में एकाग्रता आती है। तब हम जाके स्मृति स्वरूप बन पाएंगे, उस स्मृति में टिक पाएंगे, जो हमारा थीम भी है और बाबा ने भी पिछली मुरली में कहा था कि बच्चे सोचता स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। तो स्मृति स्वरूप में बाबा ने कहा था उसमें कि अपना अनादि आदि और प्रेजेंट संगम युग का जो स्मृति स्वरूप है ये अपनी स्मृति में रखना है। आपका अनादि और आदि वो तो है ही संपूर्ण, तो उस स्मृति में जब हम रहते हैं तो हमें पावर मिलती है, निश्चय होता है, शक्ति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है हमारी। और बाबा ने स्पेशली कहा कि प्रेजेंट में जो आप बाबा के बच्चे बने हो, क्या सिर्फ ज्ञान के आधार से बाबा के बच्चे हो या अनुभव के आधार से बाबा के बच्चे, अनुभवी मूर्त बनना है। बाबा ने ये बहुत अंडरलाइन कराया था, क्या अनुभव किया है तब स्मृति स्वरूप बन पाएंगे। और बाबा ने मुझे बहुत सुंदर अनुभव कराया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं और मेरे युगल हम गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तो रास्ता हमारा 1.5 घंटे का था, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत होता है, तो बैठते ही हमने बाबा के गीत चला लिए और गीत चलते ही पता नहीं उस दिन स्थिति ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी थी और गीत भी वो चल रहा था, कोई मुझे बुला रहा है, वो जो गीत है ना, हाँ बच्चों वतन में आओ, ऐसे गीत है। तो वो गीत जैसे स्टार्ट हुआ मुझे ऐसा लगा कि बाबा जैसे मुझे बादल हटा के एक इशारे से मुझे कह रहा, आजा बच्ची चल ऊपर आजा, अभी तेरा नीचे कोई काम नहीं है। और मैं बिल्कुल जैसे मेरा आकारी शरीर और मैं आत्मा खिंच के ऊपर चली गई बादलों से ऊपर, और मैं बाबा के साथ रू रिहान भी कर रही हूँ और वो गीत जो चल रहा, एक के बाद एक गीत, बड़े सुंदर गीत चल रहे थे और उसमें खोती चली गई, बाबा के साथ डांस भी कर रहे हैं, बाबा से बातें भी कर रहे, दृष्टि भी ले रहे हैं, बीच बीच में ऊपर से साकाश दे रहे हैं सारे गाड़ियों को, रास्ते में सबको साकाश देते चल रहे हैं, अपनी गाड़ी को भी साकाश दे रहे थे कि दो सुंदर फरिश्ते जा रहे हैं इसके अंदर, हाँ तो इनकी चमक चारों तरफ फैल रही है, ऐसे बहुत श्रेष्ठ संकल्प। और सबसे बड़ी बात ये थी, खाली संकल्प के श्रेष्ठ संकल्प भी थे और फीलिंग बहुत अच्छी थी, मेरे को बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रही हूँ। और बीच में कोई बात करनी होती थी तो जैसे मुझे उस दिन वो अनुभव हुआ कि जैसे मम्मा के लिए कहते हैं ना कि मम्मा जब कर्म में आती थी तो वाचा में आती थी, नीचे नहीं तो वतन में ही रहती थी। तो मैं हमेशा सोचती थी ऐसी फीलिंग कैसे होती है, उस दिन बाबा ने मुझे अनुभव कराया तो लगभग 1.25 घंटा हो गया था, तो युगल बोले कि गाड़ी का टेम्परेचर बहुत हाई होता जा रहा है, हमने एसी ऑफ कर दिया और फिर भी गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ता ही चला गया और हम इतने ट्रैफिक जाम में थे कि गाड़ी जरा सा भी नहीं हम हटा सकते थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोशिश करिए आप थोड़ा सा साइड में करके गाड़ी बंद कर दीजिए, तो भी ना वो बढ़ता ही चला गया टेम्परेचर। मैं बोल तो यहां रही थी लेकिन ऊपर बाबा के साथ पूरी थी और मैं बाबा से कह रही थी बाबा क्या हो गया गाड़ी में जरा देखें, और इतने में वो साइड में करनी पड़ी कैसे भी करके, क्योंकि वो जो पूरा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है उसके भी बियॉन्ड चली गई, तो लगा ब्लास्ट ही ना हो जाए एकदम से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। गाड़ी को बड़ी मुश्किल साइड किया तो मैंने ऊपर से बाबा से कहा बाबा चलिए नीचे चलते हैं, और हम नीचे आकर ऊपर से ही बहुत स्ट्रांग जैसे बारिश करते हैं ना ठंडी करने के लिए गाड़ी, ऐसे हमने वाइब्रेशंस में गाड़ी को ऐसे ठंडा किया। मैं नीचे उतरी, बैठी अंदर हूँ लेकिन देख बोनट को रही हूँ, और युगल ने जैसे बोनट खोला तो मैंने कहा अच्छा बाबा ये क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, अब आ जाओ ठीक कर। संकल्प मात्र भी पूरा नहीं हुआ था मेरा, इतने ट्रैफिक में जहाँ एक भी साइकिल नहीं थी और किसी के निकलने की जगह नहीं थी, ऐसा जैम बिल्कुल, वहां पर कहां से एक साइकिल आई और मेरा संकल्प भी नहीं पूरा हुआ था, गाड़ी के पास साइकिल आई, उसने साइकिल रोकी, अपना बॉक्स खोला, मेरे हस्बैंड से बोले आप साइड में होइए मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, एक पीस खराब हो गया था गाड़ी के अंदर, उसने वही पीस अपने थैले में से निकाला, उसको लगाया, कहता है आप बस साइड में हो जाइए, और फिर इनको टिप्स देने लगा कि ऐसी प्रॉब्लम हो जाए ना तो ये करना चाहिए ऐसे करना चाहिए 2 मिनट में। और वो जैसे आए मुझे तो ये अनुभूति बाबा आ गए और मेरे तो आंखों से आंसू ही नहीं बंद हुए, बस जैसे साक्षी होकर मैं देखती रही कि बाबा कैसे मेरे साथ थे उस टाइम, और जैसे साकार बाबा दादियों को सिखाते थे ना कि गाड़ी को कैसे ठीक करना है, बिल्कुल ऐसे वो मेरे युगल को बता रहे थे ऐसे ऐसे कर लिया करो, अब ये गाड़ी चाहे कितने किलोमीटर ले जाओ कुछ नहीं हुआ आपकी गाड़ी को। और वो उसके बाद सामान रख के वो लेकर भी साइकिल कहाँ गया, मैं देखती रही लेकिन मुझे नहीं दिखा। तो उस दिन मैंने इस बात को अनुभव किया कि जब हम स्मृति स्वरूप होते हैं, बाबा की याद में इतने खोए हुए होते हैं कि ऐसा लगता है कर्म भी कर रहे हैं लेकिन बाबा बिल्कुल साथ है, तो कोई भी विघ्न आ जाए जाए, पहली बात तो मुझे वो विघ्न विघ्न नहीं लगा, कोई संकल्प ही नहीं चला, क्योंकि उस टाइम मैं ऐसी साक्षी दृष्टा की स्थिति में थी कि ऐसा लगा कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, मैं अंदर नहीं बैठी हूँ और सब ठीक हो जाए। बात छोटी सी थी लेकिन स्थिति बहुत मैंने उस दिन ऊंची महसूस करी, और आज भी जब मैं उस स्थिति को मैं याद करती हूँ तो कहीं बाबा की यादों में खो जाती हूँ। तो अनुभवी होना, अपने अनुभवों को याद रखना, बार बार उस अनुभव में जाना हमें हेल्प करता है हमारी बुद्धि को एकाग्र करने में। तो बाबा ने कहा है जैसी स्मृति वैसी स्थिति, तो स्थिति हमारी पावरफुल होगी जब हम ऐसी स्मृतियों को रखेंगे। मुझे याद आता है अभी दिसंबर में ही मैं चेन्नई गई थी, तो वहां पर किसी के यहाँ हम गए तो एक कॉलेज, उनकी जो बेटी थी वो कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ कहीं बीच पर गई थी, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे की निकली हुई थी, रात को वो 9 बजे आई, और हम काफी देर से बच्चों की वेट कर रहे थे कि बच्चे आए नहीं, बहुत देर हो गई है। तो जब वो आई तो वो बहुत थकी हुई और बहुत उदास, और उसकी तबीयत इतनी खराब हो रही थी, और उसने कहा मम्मी आज तो बस मेरी, मैं सारे रास्ते वॉमिटिंग होती रही और मेरी बहुत तबीयत खराब रही, सारा आज तो मेरा दिन बड़ा खराब रहा, और वो बिल्कुल ऐसी हो रही थी जैसे अब उस पर जान ही नहीं है। तो फिर उसकी मम्मी ने पूछा तो बीच पर गए थे कुछ मजा आया? एंड यू वोंट बिलीव, मैं तो देखती रही उसका चेहरा, जैसे कि सारा ब्लड चेहरे पर ही आ गया, इतनी चमक, बस मम्मी पूछो ही नहीं, इतना मजा आया, इतना मजा आया फ्रेंड्स के साथ, हमने ये किया ये किया। तो फिर मैंने कहा और फिर तबीयत तुम्हारी खराब हो गई थी बीच में? हाँ बस आंटी वो मत पूछो, और उस वो फिर वैसी हो गई। मतलब मैंने ये देखा एक संकल्प से कैसे चेहरा उतरता है एक संकल्प से। फिर मैंने कहा ऐसा करो तुम बीच को ही याद करो, हाँ वो तो आंटी इतना अच्छा था, और फिर उसकी आंखों में वही चमक, चेहरे पे वही ग्लो। मेरे को बाबा की यही बात याद आ रही थी, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो कितनी सही बात है, बाबा ने कई बार कहा है कि कैसी भी तुम्हारी स्थिति हो, किसी भी सिचुएशन में हो, याद बाबा को करो तो उस स्टेज को अनुभव कर पाओगे। यही फर्क है लौकिक दुनिया और हम बच्चों में। और फिर बाबा ने योग के लिए ये पॉइंट्स तो कुछ ऐसे थे जो हमें ध्यान रखने हैं, जो हमारे योग में हमें हेल्प करेंगे एकाग्र होने में। और जब हम योगाभ्यास करते हैं उस समय के लिए भी बाबा ने कहा है कि 3 स्टेप्स हैं जिससे हम योग की अनुभूति को अपनी स्ट्रांग कर सकते हैं, और उसके लिए हमारी 2 फैकल्टीज बाबा ने बताई, मन और बुद्धि, जो आपने पिछले सेशन में भी सुना, मन और बुद्धि। बुद्धि क्या काम करती है? बुद्धि किसी भी चीज को समझने का काम करती है। समझने को हम कहते हैं सीइंग, देखना। जैसी कोई बात हमें समझ में आती है तो हम क्या कहते हैं? ओ आई सी। तो ओ आई सी व्हाट? जब हम समझ लेते हैं किसी चीज को, ओ आई अंडरस्टैंड, हम उसकी जगह ये भी कई बार कहते हैं ओ आई सी। तो बुद्धि समझने का काम करती है, और जब वो किसी बात को समझती है तो ऑटोमेटिकली उसका कुछ फॉर्म, कुछ इमेज जरूर बनती है, राइट? कितनी सूक्ष्म चीज हो, एक तो फिजिकल चीज है, मैंने आपसे कहा एप्पल, फॉर्म आ गया आपके सामने, लेकिन जरूरी नहीं वो फिजिकल चीज ही हो, चाहे सूक्ष्म चीज हो, मैं कहते हैं हैप्पीनेस, कुछ ना कुछ इमेज आती है उसकी भी, है ना? और जितनी डिवाइन बुद्धि होगी, जितनी दिव्य बुद्धि होगी, उतना वो सूक्ष्म चीजों को विजुअलाइज कर पाएगी। और दूसरी फैकल्टी है हमारी मन। ज्ञान के आधार पर बुद्धि उसका फॉर्म देखती है, लेकिन मन फीलिंग को महसूस करता है, महसूसता जो है वो मन को होती है। तभी बाबा ने जैसे कहा कि हमारा जो वतन है वो बिल्कुल लाल प्रकाश है, आत्माएं वहां पर ऐसे टंगी हुई हैं, बाबा ऐसे, तो बुद्धि के आधार पे तो हमने विजुलाइज तो कर लिया उसको, लेकिन जब तक हम मन से उन फीलिंग्स को महसूस नहीं करेंगे, उस शक्ति को, उस शांति को, उस प्रेम को, तब तक हमारी बुद्धि वहां स्थिर नहीं होगी, जाएंगे और आ जाएंगे। जब मन और बुद्धि जो हम देख रहे हैं उसको फील भी कर रहे हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। सिर्फ देखना काफी नहीं है, इसीलिए बाबा ने 3 स्टेप्स बताए हैं मेडिटेशन में। एक है विजुअलाइजेशन, देखना, इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं हाँ अपनी सत्यों की दुनिया को देखो, अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में देखो। देखना एक चीज है जो बुद्धि करती है, दूसरा है उसको रियलाइज करना, अनुभूति करना उसकी, वहाँ मन का काम आता है। मन और बुद्धि दोनों साथ जब काम करते हैं तो एक्चुअलाइजेशन होता है। तो ये चीजें हमें मन और बुद्धि को एकाग्र करना, इसीलिए कहते हैं बाबा राजयोग क्या है, मन और बुद्धि का योग है, ये कोई कल्पना नहीं है। विजुलाइज हम उस चीज को करते हैं जो ऑलरेडी हमने देखी हुई है, लेकिन हम भूल गए हैं, क्योंकि हम थे तो ओरिजिनली वहीं पर ना, अपना घर है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई बच्चा कहता है अरे मैं जिस दिन पैदा हुआ था ना उस दिन बहुत बारिश हुई, अरे तुमने देखा था क्या बारिश हुई थी? हाँ या तुम थे तो, वो बच्चा था तो उस समय, लेकिन क्या उसको स्मृति है क्या? लेकिन माता पिता ने बताया भाई जब तुम पैदा हुए थे ऐसी ऐसी परिस्थिति आई थी, ऐसे हम तुम्हें लेकर आए और ऐसे तुम पैदा हुए, तो उसको वो पिक्चर आती है ना अपने दिमाग में, क्योंकि था तो सही ना वो वहां पर। तो हम भी परम धाम में थे तो सही ना, हम भी फरिश्ता रूप में संपूर्ण रूप में है तो ना सूक्ष्म वतन में। तो बाबा जब हमें याद दिलाता है, जैसे मान लीजिए हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि 1947 में देश आजाद हुआ, 1948 में पार्टीशन हुआ, तो नॉलेज के आधार पर हम वहां थे नहीं, लेकिन जो हिस्टोरियंस ने बताया या 1857 में रिवोल्ट हुआ, तो वो जब बातें हम सुनते हैं तो एक इमेज आती है ना हमारे दिमाग में, आती है ना, झूठ तो नहीं है ना, वो सब सच है ना, तो हम विजुअलाइज करते हैं ना। तो हमें तो सबसे बड़ा हिस्टोरियन हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी समझा रहा है, तो निश्चय तो होना चाहिए ना हमें उस बात पे। जितना हमें निश्चय होगा उतना हम फील कर पाएंगे उसको। कई भाई बहनों को सूक्ष्म वतन में तो फीलिंग आ जाती है क्योंकि आकारी शरीर होता है, तो जैसे हम साकार में विजुलाइज करते हैं या फील करते हैं ऐसे हम वहां पर भी फील करते हैं, लेकिन परम धाम में कई बार विजुलाइजेशन समझ नहीं आती कि हम कैसे विजुलाइज करें। तो पहले तो विजुलाइजेशन क्लियर होनी चाहिए तभी रियलाइजेशन होगी, है ना। तो अभी हम थोड़ी देर उसका अभ्यास करें, म्यूजिक चला देंगे। ओम शांति। अभी यहाँ इस हॉल में बैठे बैठे ही बुद्धि से विजुलाइज करें कि आप ज्योतिर्बिंदु आत्मा, एक चमकता सितारा देखें, जैसे एक अंधेरे कमरे में दिए से रोशनी होती है, ऐसे ही मेरा शरीर भी एक अंधेरा कमरा है और मैं आत्मा प्रकृति के बीच चमकता हुआ दिया, मुझसे ही इस शरीर में रोशनी है, करंट है, चैतन्यता है। अब मैं आत्मा अपनी इच्छा से इस शरीर में एक मेरा और शरीर समाया हुआ है जो मेरे संकल्पों से बनता है, मेरा आकारी शरीर। इस शरीर को यहीं छोड़ मैं आत्मा अपने आकारी लाइट के शरीर को ले इस हॉल से बाहर निकलती हूँ। बाहर में एक बहुत सुंदर पुष्पक विमान है, मोर की शेप में है, ध्यान से देखिए उसकी सजावट, उस पर लगे रतन, उसका रंग, उसका साइज देखिए। आप उसके अंदर बैठ जाते हैं और अपनी संकल्प शक्ति से तीन बार उसको ऑर्डर करते हैं, उड़ उड़ उड़, और आपके इस पावरफुल संकल्प को ले वो पुष्पक विमान आपको उसमें बिठाए ऊपर की ओर ले जा रहा है। देखिए मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स से आप ऊपर निकल गए, आसपास की पहाड़ियों की वादियों से भी ऊपर, ऊपर से देखिए सब कुछ कितना छोटा दिखाई दे रहा है, बादलों के ऊपर, नीचे देखिए सिर्फ बादल ही बादल हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धीरे धीरे आप इस पांच तत्वों की दुनिया से परे सफेद प्रकाश की दुनिया में पहुंच जाते हैं। आप विमान से उतरते हैं और सामने ब्रह्मा बाबा बाहें फैलाए आपके स्वागत में खड़े हैं। आओ मेरे मीठे बच्चे, और आप भागकर बाबा की विशाल भुजाओं में समा जाते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ के आंचल में छुप जाता है, ऐसे बाबा की विशाल बाहों में मैं समा जाती हूँ। उस स्नेह को महसूस करें, बाबा के नैनों में देखें, बाबा आपको कैसे देख रहे हैं और आप बाबा को कैसे देख रहे हैं। जन्मों से बिछड़ा हुआ बच्चा जब अपने माता पिता से मिलता है, वो प्यार, वो सानिध्य, वो खुशी, वो प्रोटेक्टेड फीलिंग, बाबा की स्नेह से भरे नैन, रूहानी नैन, जैसे मेरे अंदर शक्ति भर रहे हैं। मेरे नैन बाबा को देख रहे हैं और बाबा के नैन मुझे देख रहे हैं। इतनी अव्यक्त स्थिति है कि धीरे धीरे मुझे सिर्फ बाबा की भ्रिकुटि में शिव बाबा दिख रहे हैं, चमकता सितारा, और बाबा भी सिर्फ मुझ आत्मा को ही देख रहे हैं और हम दोनों सितारे और ऊपर अपने वतन में चले जाते हैं। शिव बाबा ब्यूटीफुल स्टार जिससे करोड़ों किरणें चारों तरफ फैल रही हैं और मैं बाबा के ठीक सामने मैं भी एक चमकता सितारा, बाबा से वो तेज किरणें मुझ पर आती हैं और जैसे बहुत प्यार से मेरे ऊपर जितना भी जंक लगा है उसको साफ कर रही हैं और मेरे अंदर की चमक और बाहर निकल रही है और मैं जैसे बाबा एक विशाल मैग्नेट बाबा की तरफ खींचती चली जा रही हूँ और खींचते खींचते मैं बाबा से एक हो गई, बाबा में समा गई, स्नेह के सागर में गोते लगाती मैं आत्मा, शक्तियों से बाबा मुझे भर रहे हैं, मैं बिल्कुल बाप समान बन गई, मुझसे भी ऐसे ही तरंगे निकल रहे हैं, पूरे विश्व में ये तरंगे जा रहे हैं।
शांति, सभी ऐसे ही साइलेंस में बैठे रहेंगे और सभी अपने स्थान पे एक बार उठ जाएं, सभी अपने स्थान पे एक बार खड़े हो जाएं, उतना ही साइलेंस बहुत बहुत ही शांति से एकाग्रता से सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और अपनी आंखें बंद करके आज के दिन मैंने अपनी स्मृति में कौन सी बात को रखा है गहराई से उसका चिंतन करें।